लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, जब हम किसी को सच्चे मन और दिल से प्यार करते तो हम सदैव उनके निकट, उनके साथ रहने की चाह रखते हैं। जितना अधिक हो सके हम उनके साथ समय बिताने और अपने हृदय की बातों को उन्हें बतलाने की इच्छा रखते हैं। इस भांति हम अपने सच्चे और निस्वार्थ कार्यों के द्वारा उस व्यक्ति को अपने दिल की बातें कहते और उसके लिए अपने प्रेम का इजहार करते हैं। हम बिना किसी चीज की मांग किए अपनी ओर से जितना बन पड़े उस व्यक्ति को अपना सब कुछ देने की अभिलाषा रखते हैं। श्रोताओ, आज माता कलीसिया यीशु ख्रीस्त के अति पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। यह महापर्व हमें मुक्तिदाता यीशु का सारी मानव जाति के लिए अपने सबसे बड़े प्रेम की निशानी को व्यक्त करता है, जहां वे अपने को हमारे लिए रोटी और दाखरस के रूप में देते हैं, जिससे वे सदैव हमारे बीच हमारे साथ रह सकें। इतना ही नहीं, अपने इस अनमोल उपहार के द्वारा वे हमारे मन और दिल, हमारे हृदय मंदिर में प्रवेश करने की आशा रखते हैं। आइए तब हम यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त के महोत्सव आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में यह पूछें कि हम यीशु को कैसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। क्या हम उनके स्वागत हेतु सही तैयारी करते हैं? हम पवित्र साक्रामेंट में किस तरह से उनकी भक्ति करते हैं? पवित्र यूखरिस्त बलिदान को अपने जीवन में हम कितना महत्व देते हैं?
ईसा ने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो, और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथि शाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ, और वह तुम्हें ऊपर का एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त में विश्वास करने हेतु मदद करे, जिसके द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन का परिपोषण होता है। श्रोताओ, निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें याहवे और इसराइली जनता के बीच एक नए विधान की स्थापना के बारे में बतलाता है। मूसा याहवे के द्वारा दिए गए निर्देशों को लोगों के संग साझा करते और पशुओं का बलिदान अर्पित करते हुए बलि पशुओं के रक्त को लोगों के बीच छिड़काते हैं। यह रक्त उनके लिए विधान का रक्त होता है और इस भांति इसराइली जनता ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा करती है। पुराने विधान का यह रक्त हमें नए विधान के रक्त से अपने को संयुक्त करने का आह्वान करता है। पुराने विधान में पशुओं की बलि का रक्त लोगों के ऊपर छिड़का गया, लेकिन नए विधान में यीशु ख्रिस्त स्वयं बलि का मेमना बनते हुए हमारे ऊपर अपने पवित्रतम रक्त को छिड़कते हैं और इस भांति वे हमारे हृदयों में अपने नए प्रेम विधान को अंकित करते हैं। यीशु ख्रिस्त ने हमारे प्रेम के कारण अपने को कलवारी पहाड़ में एक निर्दोष मेमने की भांति क्रूस के काठ पर अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने हृदय में व्याप्त अद्वितीय प्रेम को हमारे लिए अपनी बाहों को खोलकर दिखलाया है। जिस भांति हम अपने प्रिय जनों को अपनी बाहें खोलकर आलिंगन करते हैं, उसी भांति यीशु ख्रिस्त ने क्रूस के काठ में हम सबों का प्रेम पूर्ण आलिंगन किया है। श्रोताओ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए यीशु के प्रेम को और भी विस्तृत और स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। पुराने व्यवस्था में महायाजक पशुओं की बलि द्वारा लोगों का शुद्धिकरण करते थे, लेकिन यीशु ख्रिस्त हमारे प्रेम के खातिर स्वयं अपने रक्त और मांस का बलिदान अपने पिता को एक महापुरोहित की भांति अर्पित करते हैं। वे अपने पवित्र लोहू के बहाव से हमारे सभी पापों को शुद्ध करते और हमें अनंत जीवन की सौगात प्रदान करते हैं। इस भांति हम यीशु को स्वयं एक बलि का मेमना बनते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, वे खुद एक बलि वेदी बनते और उस बलि वेदी में स्वयं एक महापुरोहित की भांति अपने ही प्राणों का प्रेमपूर्ण पाप मुक्ति का बलिदान अपने पिता को अर्पित करते हैं। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को अंतिम व्यारी के भोज में अपने शिष्यों को स्वयं अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में देते हुए सुना। यह हमें पुनः उनके प्रेम को देखने और उस प्रेम पर चिंतन करने का आह्वान करता है। कोई भी अपने को पूरी तरह किसी के लिए तब दे सकता है जब वह उस व्यक्ति को अपने सारे मन, दिल और शक्ति से प्रेम करता हो। यीशु ने हमें इसी भांति बेइंतहा प्रेम किया है और इस कारण उन्होंने अपने को हमारे लिए पूर्ण रूपेण अर्पित कर दिया। इस भांति जब हम विश्वास के साथ उस रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, तो हम यीशु ख्रिस्त में नव जीवन के भागीदार बनते हैं। अपने को देते हुए यीशु ने अपने चेलों को अपनी यादगारी में वही करने को कहा जिससे उन्होंने स्वयं किया, अर्थात वे हमें एक दूसरे के लिए अपने को वचनों में नहीं अपितु कार्यों में देने को कहते हैं। श्रोताओं, परम प्रसाद और पुरोहिताई संस्कार की स्थापना करते हुए यीशु हमें अपने को सदा दूसरों के लिए देने का आह्वान करते हैं। रोटी हमारे शरीर का अंग बनती है जब हम उसे ग्रहण करते हैं। उसी भांति परमप्रसाद जो मिस्सा बलिदान में पुरोहिताई संस्कार के माध्यम बलि परिवर्तन के बाद यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त में परिणत हो जाता है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन हमारी आत्मा का आहार बनता है। इस भांति जब जब हम पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान में सहभागी होते और रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, तब तब हम यीशु के कलवारी प्रेममय बलिदान की याद करते हुए उनके संपूर्ण प्रेममय जीवन में सहभागी होते और अपने जीवन को दूसरों के बीच बांटने हेतु भेजे जाते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से कृपा की याचना करें, जिससे हम प्रभु के पावन शरीर और रक्त के रहस्य को समझ सकें और अपने सारे हृदय से यूखरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते हुए जीवनदायी प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करें, जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को मुक्ति प्रदान करते हैं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज विश्व पारिस्थितिकी दिवस है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने एक ट्वीट प्रसिद्ध कर पृथ्वी के साथ हमारे संबंध पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमें एक अभिन्न मानवीय पारिस्थितिकी की जरूरत है जो हमारे जीवन शैली और पृथ्वी के संसाधनों के साथ हमारे संबंध को बदल दे। यह न केवल पारिस्थितिक मुद्दे का सवाल है, बल्कि मानव की पूर्णता, गरीबों की पुकार का जवाब देना है। 5 जून को विश्व पारिस्थितिकी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली दशक जारी किया। संत पापा ने संयुक्त राष्ट्र के इस पहल की सराहना करते हुए सभी लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि हम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र के दशक का स्वागत करते हुए दयालु, रचनात्मक और साहसी बने। रविवार 6 जून को पूरी कातिकली समय कोर्पुस डोमिने अर्थात ख्रिस्त के पावनतम शरीर और रक्त का महापर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस रोम समय अनुसार शाम 5:30 बजे वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में समारोही ख्रिस्ताग अर्पित करेंगे। 107वें विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के पूर्व जारी एक वीडियो में कई अप्रवासियों ने पल्ली समुदाय में स्वागत किए गए अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। संत पापा ने विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस 2021 के लिए प्रकाशित अपने संदेश में भ्रातृत्व एवं समावेश के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसको 26 सितम्बर को मनाया जाएगा। संत पापा ने कहा है कि यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं और क्यों वहाँ हैं। हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति स्थानीय कलीसिया समुदाय का पूर्ण सदस्य है। अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए विश्व दिवस के संदेश को 3 मई को प्रकाशित किया गया था, जिसकी विषय वस्तु है एक बृहद हम की ओर, दुनिया में हमारी साझा यात्रा के लिए एक स्पष्ट क्षितिज का संकेत। संत पापा फ्रांसिस ने इताली कलीसिया की पोलीकोरो परियोजना की 25वीं वर्षगांठ पर इसके युवाओं को संबोधित किया। संत पापा ने कहा, पोलीकोरो परियोजना एक आशा का चिन्ह है, खासकर दक्षिणी इटली के कई क्षेत्रों में जहां लोगों के पास काम नहीं है। आप एक नया रास्ता अपनाने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि यह वर्षगांठ महत्वपूर्ण है जो महामारी के समय सामाजिक आर्थिक संकट के समय आया है। संत पापा ने युवाओं को उनकी यात्रा हेतु 4 महत्वपूर्ण कार्यों का सुझाव दिया, चेतना लाना, रहना, उत्साही होना और साथ देना। संत पापा ने कहा, आप अपने को चेतना लाने वाले समुदाय कहते हैं, वास्तव में समुदायों को अंदर से प्रेरित होना है। समर्पण की एक शैली से संबंधों के निर्माता एकात्मकता में मानवता के बुनकर बनना है। यह पलियों और धर्म प्रांतों की मदद करने का सवाल है, रोजगार जैसे बड़े विषय पर एक साथ चलने और योजना बनाने का, उन बीजों को अंकुरित करने, उनकी क्षमता, उनकी पहल और उनकी शक्ति को प्रस्फुटित करने का प्रयास करना है जिनको ईश्वर ने हम प्रत्येक में डाला है। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर जीने का अर्थ यह नहीं है कि इस पर अधिकार किया जाए, बल्कि यह जानना कि ईश्वर, भाई बहनों, सृष्टि और अपने आप से संबंधों को किस तरह पूर्णता से जिया जा सकता है।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए चुनौतियां और उपाय के विशेष सत्र पर वाटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने भ्रष्टाचार का सामना और उन्मूलन पर सत्र को संबोधित करते हुए संदेश दिया। उन्होंने कहा, अगर हम सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहते हैं और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें भ्रष्टाचार से निपटना और इसे मिटाना होगा। व्यापक अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। कानून के शासन और अपराध की रोकथाम को साथ साथ चलना चाहिए। भ्रष्टाचार की रोकथाम सार्वभौमिक मानव के सम्मान दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संरक्षण के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा कि अवैध वित्तीय प्रवाह का मुकाबला करने और संपत्ति की वसूली एवं आपराधिक अभियोजन के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने संत पापा फ्रांसिस द्वारा हाल ही में जारी किए गए प्रावधानों को भी याद किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हितों के संभावित संघर्षों के वित्तीय संचार में सुधार करना है। महाधर्माध्यक्ष के अनुसार सत्र ने सभी राज्यों के प्रयासों को आगे बढ़ाने और भ्रष्टाचार के अभिशाप को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। उधर पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक ख्रिस्तीय जोड़े को पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित ईश निंदा के लिए दी गई मौत की सजा को पलट दिया। उन्होंने मौत की सजा के 6 साल बिताए थे। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शहबाज अली रिजवी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने शफकत इमानुएल और उनकी पत्नी सगुप्ता कौसर के खिलाफ मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ सबूत ठोस नहीं है। कोर्ट ने मौत की सजा को पलट दिया और दंपति को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें 25 जुलाई 2013 को गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2014 में एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने दंपति को इस निंदा के लिए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दंपति ने शुरू से ही अपने आरोपों से इनकार किया। दंपति के वकील सैफुल मलूक, जिन्होंने आसिया बीबी का सफलतापूर्वक बचाव किया था, उनकी इस निंदा की सजा को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया। उन्होंने कहा, आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद अगले 2 दिनों में पति पत्नी को मुक्त होने की उम्मीद है। उधर भारतीय कैथोलिक युवा कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीबों को खाने के पार्सल सौंपने से लेकर मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार करने तक अस्पताल के बाहर रक्तदान करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की सहायता कर रहे हैं। CCBI के युवा आयोग के कार्यकारी सचिव फादर चेतन मचाडो ने एशिया न्यूज से बातें करते हुए कहा, भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन देश के कई हिस्सों में राहत कार्यों में सबसे आगे रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।